उस लड़की ने दूर से खड़े होकर निक और प्रियल के घर को देखा और फिर एक रहस्यमय तरीके से मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। दूसरी ओर निक प्रियल को बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे जरूर कोई गलतफहमी हो गई होगी। निक ने कहा, प्रियल, रोड पर हजारों लोग आते जाते रहते हैं, तुमने किसी की छाया देख ली होगी, हो सकता है कि वो परछाई किसी रुकी गाड़ी की हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम ज्यादा मत सोचा करो, तुम्हारी ओवरथिंकिंग बेबी पर गलत असर डाल सकती है। प्रियल बोली, लेकिन आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो, जब मैं कह रही हूं कि मैंने किसी लड़की की परछाई देखी थी तो। अच्छा, तो अब तुम्हारी परछाई ने एक लड़की का रूप भी ले लिया? हाँ, क्योंकि उसके बाल लंबे थे और शायद उसने दुपट्टा भी लगाया था। निक ने कहा, अच्छा ठीक है बाबू, मैं कल सीसीटीवी फुटेज चेक कर लूंगा, अभी के लिए तो आराम करो और प्लीज बच्चों के सामने ये सब बात मत करना, वे घबरा जाएंगे। निक प्रियल को रूम में लेटाकर बाहर की ओर गया। उसने चारों तरफ देखा तो सड़क बिल्कुल सुनसान थी, यहां तक कि कोई रुकी गाड़ी भी वहां पर मौजूद नहीं थी। निक ने कहा, एक तो अंकल ने अपना घर भी इतने सुनसान एरिया में ले रखा है कि अंधेरा होते ही यहां पर सन्नाटा छा जाता है। पता नहीं ये गाड़ी कहां चली गई, ये लोग इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं। मैं देखना चाहूं भी तो प्रियल और बच्चों को अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकता, कल इस बारे में अंकल से बात करता हूँ। निक ने अपनी तसल्ली के लिए थोड़ी दूर जाकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। उसने वापस घर आकर अंदर से दरवाजा बंद करके सोने चला गया। अगले दिन हमेशा की तरह निक नील और निखिल को रेडी करके स्कूल छोड़ने जा रहा था, जबकि प्रियल अभी तक सोई हुई थी। निक ने कहा, इन दोनों को भी स्कूल छोड़ने जाना जरूरी है, बट प्रियल को इस तरह अकेला भी नहीं छोड़ सकता। अब तक परी यहाँ थी तो वो उसका अच्छे से ख्याल रख लेती थी। कल रात प्रियल को यहाँ किसी के होने का एहसास हुआ था, ऐसे में अगर मेरी एब्सेंस में किसी ने प्रियल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो। नहीं, प्रियल और बेबी को लेकर तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, अंकल के घर पर अभी भी सारी फैमिली मौजूद होगी, क्यों ना मैं जाते वक्त प्रियल को वहाँ छोड़ दूँ, उसने जोर से आवाज़ लगाते हुए कहा। नील, निखिल, बच्चों, तुम दोनों एक बार भी मेरा वेट करो, मैं प्रियल को भी लेकर आता हूँ। नील और निखिल बोले, ओके, लेकिन जल्दी आना पापा, हम लेट हो रहे हैं। निक प्रियल को जगाने के लिए रूम में गया। निक ने कहा, प्रियल चलो अभी उठो। प्रियल नींद में बड़बड़ाई, मुझे अभी नहीं उठना, आप मुझे चैन से सोने नहीं देते। निक ने हंसते हुए कहा, ओ रियली, मैं नहीं सोने देता, तुम चैन से सो पाओ इसलिए मुझे सोफे पर सोना पड़ता है और बच्चों को दूसरे बेड पर। प्रियल बोली, क्या काम है आपको, परी को बोल दीजिए ना, मुझे क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो। परी कबीर के साथ वापस लखनऊ चली गई, ये तो नहीं उठने वाली, मुझे ही यहाँ पर किसी को बुलाना पड़ेगा। निक ने प्रियल को वहीं पर छोड़कर अंकल को कॉल करके घर पर बुलाया। वो दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर घर गया। लौटते वक्त निक अपनी गाड़ी में बैठ ही रहा था कि तभी अचानक आसपास का आवाज़ सुनकर वो वहीं रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की उसकी तरफ पीट करके खड़ी थी, जो कि किसी और गाड़ी वाले से भीख मांग रही थी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और कपड़े भी मैले थे, उसके कपड़ों से वो मांगने वाली बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। वो लड़की बोली, हमने दो दिन से कुछ नहीं खाया, आप हमें पैसे दे दीजिए या फिर हमें कोई काम दे दीजिए, हम पढ़े लिखे हैं, आप जो बोलेंगे हम वो कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ हमें खाना और रहने की जगह दे दीजिए। उस आदमी ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले। जैसे ही लड़की ने पैसे लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, गाड़ी में बैठे आदमी ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ लिया। वो गाड़ी वाला आदमी लगभग 50 साल का लग रहा था, जो कि उससे बहुत ही बदतमीजी से पेश आ रहा था। उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा तो वो आसपास के लोगों से मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगी। निक ने वो सब देखा तो वो गुस्सा हो गया और मदद के लिए उस लड़की की ओर बढ़ा। निक ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, लीव हर हैंड, तुम लोग इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो, एक तो ये पहले ही इतने बुरे हालातों में है, ऊपर से तुम इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। गाड़ी वाला आदमी बोला, तुझे इससे क्या, सब ऐसे ही होते हैं, तू इसे यहाँ से ले जाएगा तो तू कौन इसे अच्छे से रखेगा। निक ने लड़की का हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं कैसा भी हूँगा लेकिन तुम जैसा तो बिल्कुल ही नहीं हूँ, तो कभी मुझे खुद के साथ मत कंपेयर करना, अगर फिर से किसी के साथ यही हरकत करते दिखे तो मुझे दो मिनट भी नहीं लगेंगे तुम्हें यहाँ से पकड़कर जेल में ले जाने में। निक की बातों से उस आदमी को लगा कि वो कोई पुलिस वाला हो सकता है, उसने बिना ज्यादा बहस किए जल्दी से अपनी गाड़ी वहां से ले जाना ही ठीक समझा। उसके जाते ही निक ने उस लड़की का चेहरा देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। निक हैरान हुआ, मीरा तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो भी ऐसे हालात में, तुम्हारे बाबा कहाँ है, ओ माई गॉड, तुम यहाँ कैसे, तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा था ना, कहीं तुम वहां से भाग कर तो ये सब, तुम चलो मेरे साथ। निक की बात सुनकर मीरा वहीं पर खड़े होकर रोने लगी, जबकि निक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज से लगभग एक साल पहले जब वो मीरा से मिला था तब वो बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, थोड़े दिनों बाद उसे उसकी बीमारी का पता चला। आखिरी बार जब वो उससे मिला था तब उसके बाबा ने उसे ट्रीटमेंट के लिए मेंटल अस्पताल भेज दिया था, उसके बाद निक ने उसे आज ही देखा था। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मीरा रोते हुए बोली,
हमारे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके मरते ही हमारे परिवार वालों ने हमें पागल घोषित कर हमारा घर अपने नाम करवा लिया। अब हम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। बाबा के जाने के बाद हमारे पास ना तो रहने की जगह है और ना ही खाने के लिए खाना। निक ने कहा, लेकिन तुम यहाँ शिमला कैसे आई? मीरा बोली, वो किसी ने हमें नौकरी का बोलकर किडनैप करके यहाँ पर ले आए। वो हमसे गलत काम करवाना चाहते थे। हम जैसे तैसे वहाँ से भागकर निकल तो आए, लेकिन अब हमारे पास तो वापस जाने तक के पैसे भी नहीं हैं। प्लीज आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए, हम वापस कोलकाता। लेकिन हम वापस किसके पास जाएंगे? हमारा तो अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा, निक ने सोचते हुए कहा। क्या सच में चंद्रकांत जी की डेथ हो गई है या मीरा कोई ड्रामा कर रही है? पिछली बार इसने जो किया उसके बाद इस पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन मैं इसे इस हालत में भी तो नहीं छोड़ सकता। ये मुझे ठीक नहीं लग रही। आई नो प्रियल गुस्सा होगी, लेकिन मुझे इसे अपने साथ घर लेकर जाना ही पड़ेगा। हम सब समझ रहे हैं कि आप किस सोच में डूबे होंगे। देखिए, पिछली बार हमने जो भी किया उस वक्त हम अपने होश में नहीं थे। आप भी हमें उसी बेसिस पर जज कर रहे होंगे। हमें लेकर बेवजह चिंतित मत होइए। हम जा रहे हैं यहाँ से। हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, और आप पर तो बिल्कुल भी नहीं, निक ने कहा। नहीं रुको मीरा, तुम्हारे बाबा एक बहुत ही अच्छे और जिंदा दिल इंसान थे। वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। उनकी खातिर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। चलो गाड़ी में बैठो, हम मेरे घर चल रहे हैं। नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। वहाँ आप अपने दोस्तों के साथ रहते होंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? और आपकी पत्नी भी तो है, वो तो मुझे देखकर और भी गुस्सा करेगी, निक ने कहा। मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं रहते। रही बात प्रियल की, तो उसे मैं संभाल लूंगा। निक मीरा को लेकर अपने घर की ओर आ रहा था, जबकि मीरा एकटक निक की तरफ देखे जा रही थी, मानो अभी भी उसके दिलो दिमाग से निक के लिए जो प्यार था वो रत्ती भर भी कम ना हुआ हो।
निक की आंखों में चंद्रकांत जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था। जब भी वो उससे मिलते थे तो मुस्कुराकर अभिवादन किया करते थे। पिछली बार भी उन्होंने निक को सदा खुश रहने का आशीर्वाद दिया था। उनकी मौत के बारे में सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। दूसरी ओर निक के घर पर अंकल और प्रियल साथ में बैठकर बात कर रहे थे। प्रियल ने कल रात जो भी हुआ वो अंकल को बता दिया। प्रियल बोली, मैंने सच में कल रात गेट के पास किसी लड़की को देखा था। अंकल भाई, निक मेरे बात का विश्वास ही नहीं कर रहा। आपको तो मुझ पर विश्वास होगा ना भाई? अंकल ने कहा। हाँ प्रियल, हो सकता है कि निक का पीछा करते हुए कोई इस तरफ आया होगा। हम लोग जिस मिशन से जुड़े थे वो खतरनाक बहुत था। तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं एक बार फिर से सारे फुटेज चेक कर लूंगा। कहीं कुछ दिखाई देगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। बाकी बेवजह का स्ट्रेस मत लो। अगर कोई हुआ भी तो हम लोगों के होते हुए तुम्हें और बच्चों को कुछ नहीं होगा। प्रियल बोली, निक अभी तक घर नहीं आए? उन्हें तो अब आ जाना चाहिए था। अंकल ने कहा, शायद वो लौटते वक्त कहीं चला गया होगा। आजकल तुम छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन लेती हो। अंकल और प्रियल बात ही कर रहे थे कि तभी घर की डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज़ सुनकर प्रियल जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोलने जाने लगी। प्रियल मुस्कुराते हुए बोली, ज़रूर निक ही आए होंगे, मैं जाकर दरवाज़ा खोलती हूँ। अंकल ने कहा, अरे ऐसे दौड़कर मत जाओ प्रियल, गिर जाओगी। प्रियल बोली, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ भाई। प्रियल ने दरवाज़ा खोला और बाहर देखने लगी। निक अपनी गाड़ी अंदर की ओर पार्क करने लगा। अब तक उसका ध्यान मीरा की तरफ बिल्कुल नहीं गया था। प्रियल धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आ रही थी कि तभी निक ने बाहर निकलकर मीरा के लिए कार का दरवाज़ा खोला। निक के साथ मीरा को देखकर प्रियल ने गुस्से से गेट का हैंडल पकड़ लिया। प्रियल गुस्से में बोली, शायद आप गलत घर में आ गए। निक ने कहा, एक बार कुछ मत बोलो प्रियल, आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। आओ मीरा, अंदर चलते हैं। मीरा बोली, हाँ शोना। प्रियल ने गुस्से में देखते हुए निक को कहा, अकेले में मिली आप मुझे, फिर बताती हूँ मैं आपको। आज के बाद इस मीरा नाम की चुड़ैल को मैंने यहाँ से नहीं निकाला तो मेरा नाम भी प्रियल नहीं। इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी फैमिली में इसे लाने की? मीरा और निक अंदर गए तो वहीं प्रियल भी धीरे धीरे चलती हुई उनके पीछे आ रही थी। अंकल ने भी निक के साथ मीरा को देखा तो वो भी हैरान रह गया। अंकल ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम मीरा हो ना, जो कोलकाता में हमारी नेबर थी? मीरा बोली, जी हम वही हैं, नमस्ते, कैसे हैं आप? प्रियल को देखकर उसने कहा, ओ तो आप प्रेग्नेंट हैं, लेकिन आप तो माँ बन ही नहीं सकती थी, फिर कैसे? प्रियल बोली, और तुम्हें ये सब बात किसने बताई? क्या कर रही हो तुम यहाँ? निक ने बीच में ही कहा, प्रियल मुझे मीरा रास्ते में मिली। इसके बाबा की डेथ हो गई है तो आजकल इसकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। चंद्रकांत जी के रिश्तेदारों ने मीरा को घर से निकाल दिया। प्रियल बोली, अच्छा, घर से निकालकर डायरेक्ट शिमला में शिफ्ट कर दिया? घूमने आई हो यहाँ? तुम मुझे अपनी बात पूरी करने दोगी? कुछ लोगों ने मीरा को जॉब का बोलकर यहाँ बुला लिया और यहाँ पर ये किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट में फंस गई थी। वहां से तो ये जैसे तैसे भागकर निकल कर आ गई, लेकिन अब इसके पास इतने पैसे नहीं है कि ये वापस जा सके। मैं देखता हूँ इसकी सिचुएशन थोड़ी ठीक हो जाए, उसके बाद इसे यहाँ से वापस कोलकाता भेज दूंगा। मीरा बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारी मदद की। अगर आप बुरा नहीं माने तो क्या हमें खाने के लिए कुछ मिल सकता है? निक ने कहा, तुम अंदर बाथरूम में जाओ, मैं प्रियल को बोलकर उसके कुछ कपड़े भेज देता हूँ, तुम चेंज करके फिर खाना खा लेना।
मीरा निक के कहने पर गेस्ट रूम में चली गई, जबकि प्रियल उसे गुस्से में देख रही थी। उसे मीरा का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया।